بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس سورت کا نام الہاکم التکاثر کی سورت ہے. اس کو مختصر یعنی شارٹ میں سورہ تکاثر بھی کہتے ہیں. یہ سورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اتاری گئی. اس سورت میں 8 آیت ہے. پہلے میں پورا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. تم لوگوں کو یعنی ہم انسانوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے دنیا کے آرام کا سامان حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تمہیں بہت جلدی سب باتوں کا پتہ چل جائے گا. پھر دھیان سے سن لو کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تمہیں بہت جلدی پتا چل جائے گا اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو کبھی تم ایسا نہ کرتے. یقین جانو کہ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. پھر یقین جانو کہ تم اس کو بالکل یقیناً دیکھ لو گے. پھر تم سے اس دن یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ دنیا میں نعمت کا کیا حق ادا کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ قرآن مجید کی 1000 آیتیں پڑھ لیا کرو. اب ظاہر بات ہے 1000 آیت قرآن کی پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ 1000 آیت کو روزانہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن ہر ایک کے لیے تو مشکل ہے. عرض کیا گیا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ روزانہ 1000 قرآن کی آیت پڑھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم الہاکم التکاثر کی صورت نہیں پڑھ سکتے. کہا حضور تو پڑھ سکتے ہیں. یہ تو بہت آسان ہے. اس میں تو 8 آیت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس صورت کو پڑھے گا اللہ اس کو 1000 آیت کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. लिहाजा 24 घंटे में एकाध मर्तबा, पूरे दिन में एकाध मर्तबा इस सूरत को जरूर पढ़ लेना चाहिए, तो उसकी बरकत से इंशाल्लाह 1000 आयत के पढ़ने का सवाब हमें हासिल हो जाएगा। कहते हैं कि एक मर्तबा हदीस में आता है कि दो खानदान, दो फैमिली के बीच में जरा हरीफाई हो गई, मुकाबला हो गया, और अरबस्तान में उस जमाने में फैमिली खानदान ये बहुत बड़ी चीज समझी जाती थी। अपने खानदान के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लोगों के लिए लोग जान देने के लिए भी तैयार होते थे। अब आप सोचो कि चचा अबू तालिब थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, हालांकि वो तो काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे, और ऐसी मदद की, ऐसी मदद की कि सारे मक्का के दुश्मन हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। खास तौर पर चचा अबू तालिब जब तक जिंदा रहे वो हमेशा दीवार बन के खड़े हो जाते, और कोई मक्का के दुश्मन आपको सता नहीं सकते। चचा अबू तालिब ने जो हुजूर की मदद की वो सिर्फ इसलिए कि खानदान के बड़े होने की वजह से, और कोई वजह नहीं, तो ईमान ही नहीं लाए। तो अरबों में ये चीज खानदान की बड़ी आम थी। आपको एक हिस्सा सीरत पाक का मालूम है, एक मर्तबा पूरे मक्का वाले कुरैशियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है बनो हाशिम, उसका बायकॉट किया, उनके साथ व्यापार लेन देन सब चीजें इन्होंने बंद कर दी, और शिया में अभी तालिब एक जगह का नाम है मक्का में, वहां हुजूर और हुजूर के घर के लोगों को वहां भेज दिया, और खाना पीना जरूरत की कोई चीज मिलती नहीं थी, इसीलिए इतनी परेशानी हुई कि उसी जमाने में पत्ते खाने पड़े। ये उसी जमाने की बात है जब बायकॉट किया था पूरे मक्का वाले, और उस पत्ते खाने की वजह से पाखाना बकरियों की जो लेंगी होती है, बकरियों का जो पाखाना होता है, ऐसा पाखाना सब लोगों का हो गया। अब जितने लोग हुजूर के साथ बायकॉट में थे, जेल में थे, समझे नजर कैद जैसी हालत थी, तो सब मुसलमान नहीं थे, उसमें बहुत सारे लोग वो थे कि जो सिर्फ खानदान और फैमिली की वजह से हुजूर के साथ वहां आए। अरब में ये चीज अजीब थी, फैमिली और खानदान की वजह से ताल्लुक को मजबूत और मोहब्बत के साथ आई, तो दो फैमिली दो खानदान में एक दिन हरीफाई हो गई, मुकाबला हो, अजीब। एक फैमिली के लोग कहने लगे कि हमारी फैमिली में आदमी बहुत ज्यादा है, तो दूसरी फैमिली के लोग कहने लगे कि हमारी फैमिली में आदमी ज्यादा है। आदमी किसमें ज्यादा है, संख्या किसके साथ ज्यादा है, तादाद इनकी ज्यादा उसमें हानि पाई गई। तो क्या चलो तुम कहते हो कि हमारे आदमी ज्यादा, तुम कहते हो कि हमारे आदमी ज्यादा। सबसे अच्छी बात गिनती बढ़ गई, काउंटिंग की हो गई। अब जो गिनती करके बैठे तो एक फैमिली और एक खानदान के अंदर आदमी कम गिने और दूसरों की ज्यादा हो गए। तो जिनके कम आदमी थे उन्होंने ये कहा कि देखो हमारी फैमिली में भी आदमी बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो लड़ाई जो हुई थी उस लड़ाई में ये शहीद हुआ, वो मर गया, वो मर गया, इसकी वजह से हमारे आदमी इस वक्त कम है। यानी जमीन पे कम है, जमीन के अंदर ज्यादा है। नहीं मानते हो तो चलो हमारे साथ कब्रिस्तान ले जाकर मैं कब्र गिन के बता दूं, देखो हमारे कितने आदमी की कब्र वहां है। तो कहा चलो कब्रिस्तान जाएंगे, कब्र गिनेंगे। तो कब्र गिनी बाबा है और चलने के लिए देखो हमारे आदमी की कितनी ज्यादा कब्र है। अब टोटल लगाओ फिर हमारे आदमी ज्यादा या तुम्हारे आदमी है। ऐसा भी फखर आरंभ में होता था। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये सूरत उतारी कि अल्लाहु मुत्तकाबुन। इसमें दोनों चीज कि लोग फखर करते किस पर, अपने आदमी अपने लोग ज्यादा होने के ऊपर, माल और दौलत को ज्यादा हासिल करने के ऊपर। और अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम माल ज्यादा मिल जावे, दौलत ज्यादा मिल जावे, उसमें ऐसे लग गए, ऐसे लग गए कि तुम ऐसी गफलत में पड़ गए कि तुम्हें कोई चीज याद नहीं रही, जिंदगी भी याद नहीं रही, यहां तक कि जिंदगी गुजरते गुजरते मौत आ गई। ये दुनिया, दुनिया कमाना, दुनिया के पीछे पड़ना कि मेरी दौलत ज्यादा हो जाए, मेरा माल ज्यादा हो जाए, ये ऐसी लालच है कि उसका कोई एंड ही नहीं। आदमी उसमें किसी जगह के ऊपर स्टॉप करने तैयार नहीं होता है, लगा रहता है, लगा रहता है, यहां तक कि आदमी मर के कब्रिस्तान पहुंच जाता है। तब आदमी को लाइफ होती है ओ हो, मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई और इसी दुनिया के चक्कर में मेरी जिंदगी निकल गई, मुझे तो पता भी नहीं चल सका। तो अल्लाह ताला यही चीज समझाते हैं हमको, ये ईमान वाले कहीं तुमको ऐसी हालत ना हो जाए कि तुम ऐसी गफलत में पड़ जाओ, मौत को भी भूल जाओ, मरने के बाद की जिंदगी को भूल जाए और ऐसे दुनिया माल दौलत को बढ़ाने के ज्यादा करने के चक्कर ये करो कि जिंदगी कब खत्म होगी वही पता नहीं है। पर कुछ ऐसी ही गफलत हमारे दिलों पर है, अल्लाह अपने कर्म से उस गफलत को दूर कर। आगे फरमाया कि देखो यकीन कर लो कि यकीनन तुमको पता चलेगा कि जिसने अपनी जिंदगी इस दुनिया और पहाड़ और ऐसी चीजों के पीछे लगा दी उसका अंजाम और उसका एंड कैसा आता है। और देखो एक अजीब इंसान की आदत है, इंसान एक चीज को सुनता है तो सुनने से तबीयत पर असर थोड़ा कम होता है, लेकिन आंख से कोई चीज देखता है तो उसका असर ज्यादा होता है। और वही चीज आदमी के ऊपर पड़ती है तो उसका असर और ज्यादा होता है। एक सुनना आंख से देखना एक और खुद अपने ऊपर आना, तीनों में बहुत फर्क है। कभी एक एक्सीडेंट के बारे में हम सुनते रहते, उसका एक्सीडेंट, इसका एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट, असर होता है। हमको भी तबीयत में घबराहट होती है। कभी आंख से देखते सामने एक्सीडेंट हुआ और असर, और कभी खुद अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसका असर कुछ और होता है। हजरत मूसा अलैहि सलाम तूर पार गए तो अल्लाह ताला ने उनको खबर दी कि मूसा तुम यहां मेरे पास आए, एक चिल्ला तुमने एहतिकाफ किया, बहुत अच्छा काम किया, मैंने तुमको बुलाया था कि यहां आके एहतिकाफ करो, 40 दिन रहो, मैं तुमको तौरात किताब दे दूंगा। पहले 30 दिन फिर 10 दिन बढ़ा के 40 दिन अल्लाह ने पूरे कर, लेकिन तुम यहां आए और वहां तुम्हारी कौम को एक बछड़े की पूजा में लग गई कि नबी गैर हाजिर है, नबी गए है वहां, तो आपकी कौम ने तो वहां एक मूर्ति बनाई बछड़े की और उसकी पूजा करना चालू कर दी। अब नबी की तबीयत से तो ऐसा असर हो गया कि बात सुनिए, असर हुआ कि ऐसा कैसा मेरी कौम गुमराह हो गई, मैं यहां आया और उन्होंने ऐसा धंधा नया चालू कर दिया। फिर मुताली सलाम को असर हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 40 दिन पूरे किए, तौरात किताब अल्लाह ने दी, लेकर के आए और आंख से देखा कि यूं बचने की पूजा करते हैं, तो ऐसा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि तौरात किताब की जो मुबारक तख्ती थी जिस पे लिखी हुई थी वो हाथ से गिर गई उसी गुस्से में, और कुछ उसमें टूट भी गई, और ऐसा गुस्सा आया हजरत मूसा अलैहि सलाम को कि अपने भाई हजरत हारून अलैहि सलाम की दाढ़ी और बाल पकड़े और पूरा हिला डाला हारून अलैहि सलाम को, और ऐसा हिलाया, ऐसा हिलाया गुस्से में कि हारून अलैहि सलाम को कहना पड़ा, قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، अरे वो मेरी मां के बेटे, हालांकि बाप भी एक थे लेकिन मां के बेटे का मां के नाम में मोहब्बत है, इसीलिए इस नाम से याद दिलाए कि क्या कर रहे हो, ये मूर्ति पूजा ले करे और आप गुस्से मेरे पर हो रहे हो, ऐसा जरा आंख से देखने के बाद, तो आंख से देखने के बाद जो आदमी की तबीयत पे असर होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं, देखो तुम जब आंख से देखोगे, अभी तो दुनिया में हम सुनते हैं कयामत है, कब्र है, सुनते रहते हैं, जहन्नम है, अजाब है, आग है, लेकिन एक दूसरी चीज है जब इंसान उसको आंख से देखेगा, देखना तो हर एक को मिलना है, इसलिए कि जहन्नम के ऊपर से पास हुए बिगड़ तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। जहन्नम पर एक ब्रिज है, पुल है, जिसको पुल फिराज कहते हैं, उस पर से तो पास होने भी हो जाना है, गुजरने भी गुजरना है। सबको अल्लाह के नबियों को भी, पैगंबरों को भी, सहाबा को भी, अलिया को भी, आम इंसान को भी, सबको पास होना है। वह कामना हर एक को उस ब्रिज को पास करना है, तो मिलेंगे तो मिलेगी, और गुनहगार लोग लामन का तो करना है, कबर में भी देखेंगे जहन्नम की आग को, निदान सलामत से भी जहन्नम नजर आ रही होगी। तो एक असर वो होता है जो आंख से देखने के बाद, और तीसरी चीज अल्लाह हिफाजत में रखे जब जहन्नम में डाले जावे या अजाब में डाले जावे या कब्र में अजाब आ जावे, तो जब पड़े आदमी के ऊपर उस वक्त पर अलग हालत होती है। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि जो लोग इसी दुनिया को ज्यादा कमाएंगे और हराम तरीके से कमाएंगे, हराम कामों में खर्च कर लें, दोनों चीज कमाना भी हराम तरीके से और खर्च करना भी हराम कामों में, जो इतने रात दिन लगे पड़े हुए ऐसे लोग उसको जरूर देंगे, जिसकी वजह से उनको गफलत आ गई अल्लाह की याद से आखिरत से। तुम यौमईज़िन सहाबा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पढ़ा करते हैं, हमको तो ऐसा लगता था कि ये सूरह अलहज़ तकासुर की आयत है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये तो हदीस है, बुजुर्ग पढ़ा करते थे। यकूल इब्न आदम माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरी दौलत बढ़ जावे ज्यादा हो जावे, मैं रेत करूं हरीफाई करूं दूसरे के माल को ज्यादा कर दे, लेकिन तुम्हारा माल कितना माहता रहता, जितना खाया और खत्म किया वो अपना, वह मानवीता जो पहन के पुराना कर डाला वो अपना, और जो सदका करके खैरात करके अल्लाह के बैंक में जमा कराया वो अपना, ये तीन अपना खाया पहना और अल्लाह के यहां सदका करके जमा कराया, बाकी सब दूसरों का। और फिर किस बात पर आदमी कहता है मेरा माल मेरी दौलत है, वो तो दूसरों के लिए जमा करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो नेमत भी हम तुमको दुनिया में देते हैं उस नेमत के बारे में कयामत के दिन जरूर सवाल करें, कोई भी नेमत, खाना नेमत, पानी नेमत, कपड़े नेमत, और जो है अच्छा मकान नेमत, हर चीज नेमत जिसमें आदमी को मजा आवे लज्जत आवे, उस चीज के बारे में अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेंगे। और सवाल सीधा साधा बस दो ही सवाल होंगे, कहां से लाते थे और कैसे खर्च करते, इतना सवाल का जवाब तैयार रखने का, कहां से लाए थे और कैसे उसको खर्च करते थे, का हर नेमत के बारे में अल्लाह कयामत के दिन तुमसे ये सवाल करेंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बात को सामने रखते, कोई भी नेमत आती का अल्लाह कयामत के दिन इसके बारे में पूछेंगे ये नेमत कैसे आई। बात करता तो कई कई दिनों की भूख और प्यास और परेशानी के बाद कोई चीज मिल गई, फिर भी यही ध्यान कि अल्लाह कयामत के लिए इस नेमत के बारे में सवाल करेंगे। इसीलिए आदमी को हमको भी हमेशा इस चीज को ध्यान में रखने का कि कोई भी नेमत मिली, नई गाड़ी अल्लाह ने दी तो फौरन अल्लाह की तरफ ध्यान, अल्लाह मुझे सवाल करेंगे मैंने कहां से इसको लाया और मैं इसको कहां इस्तेमाल कर रहा हूं, कहां खर्च कर रहा हूं, कहां लगा रहा हूं, मेरे पास कोई नया कपड़ा आया अल्लाह सवाल करेंगे कहां से आया था, मैंने उसको कैसे यूज किया इस्तेमाल किया, मेरे पास दौलत आई कहां से आई, मैंने उसको कहां खर्च की, अल्लाह मुझे कयामत के लिए पूछेंगे। ये दो सवाल हमेशा दिमाग में रखते, कोई भी मजे की नेमत की चीज इस दुनिया में मिले उसके इसके बारे में जो सवाल हमेशा ही सामने रहे, अल्लाह ने और ताकीद से फरमाया, तुम्हारा मरा तुसअलुन्ना यौमइज़िन अन्नईम, अल्लाह जरूर सवाल करेंगे। तंदुरुस्ती भी आ गई, क्या हमने तुमको तंदुरुस्त बनाया था, जवान बनाया था, ताकत वाला बनाया था, वो तंदुरुस्ती तुमने कहां इस्तेमाल की, कहां खर्च की, अल्लाह उसके बारे में सवाल करें। और पांच सवाल तो मशहूर है, प्रख्यात, कि उसके बगैर तो किसी का पैर अल्लाह के सामने से हटने वाला है ही नहीं। पांच सवाल, हर एक आदमी को कयामत के लिए पांच सवाल का तो फर्जिया कंपलसरी जवाब देना ही देना है। एक, जिंदगी के बारे में, बालिग होने से लेकर मरने तक की जिंदगी कहां हो रहा है। दूसरा, जवानी के बारे में, कहां गई जवानी, कैसे कामों में गई। तीसरा, माल कैसे कैसे कमाया। चौथा, माल कहां कहां खर्च किया। और पांचवा, जितना जानते थे उसको इतना अमल किया। हदीस में हर इंसान को कयामत के दिन ये पांच सवाल के जवाब की तैयारी रखनी है। इल्ला ये, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होंगे कि अल्लाह ताला उनको अपना कर्म करना करके बगैर हिसाब किताब के जन्नत में देते हैं। अपने तो अल्लाह ताला से यही होगा, इसलिए हदीस में आता है जिसका भी हिसाब हुआ वो तो समझो फंस गया, हिसाब जो होगा तो फंस गया होगा। हम जानते हैं जिसके यहां भी इनकम टैक्स वाले आते हैं, कुछ तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ तो तोड़ पानी करनी ही पड़ेगी और कुछ तो दो नंबर का डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ऐसा ही मामला है वहां का भी, कि जिसका हिसाब शुरू हुआ समझो कि वो आदमी तो फंसी है। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ भी सवाल भी कि अल्लाह तेरा एक कोटा कुछ ऐसा भी है कि जिसमें तेरे ऐसे बंदे होंगे कि जिनको बगैर हिसाब से जन्नत में भेजने वाला है, अल्लाह तू उसमें हमको शामिल कर दे। उसी में खैरियत है, उसी में मजा है।